हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आंशी अर्जुन के साथ गाड़ी में थे, दोनों ट्रैफिक में फंसे थे। अमन की सगाई होते देख आंशी को काफी बुरा लगा। उसे तसल्ली देने के लिए अर्जुन ने आंशी को गले लगा रखा था। वहीं उनकी गाड़ी के बगल में विधिक की गाड़ी थी। दोनों गाड़ियों के शीशे खुले होने की वजह से विधिक ने उन दोनों को साथ देख लिया। आंशी, तुम किसके साथ हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? विधिक ने बड़बड़ाकर कहा। वो गाड़ी से बाहर निकलने को हुआ, तभी उसका ड्राइवर बोला, सर प्लीज बाहर मत जाइए, इतने ट्रैफिक में मैं व्हीलचेयर बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। विधिक को अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। ट्रैफिक क्लियर होने लगा तो अर्जुन ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। उन्हें वहां से जाते देख विधिक ने कहा, उस गाड़ी का पीछा करो, अगर तुम्हारी आंखों से वो गाड़ी एक पल के लिए भी गायब हुई तो याद रखना मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, विधिक ने गुस्से में कहा। विधिक की बात सुनकर वो ड्राइवर डर गया। उसने गाड़ी का डोर खोला और विधिक को वहीं पर छोड़कर भागने लगा। विधिक ने गुस्से में अपना हाथ गाड़ी की सीट पर मारा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रॉबिन, दो बार वो मेरे हाथों से बचकर निकल गई, पहले उस मेले में और अब यहाँ। दोनों बार मैं तुम्हारी वजह से इतना लाचार हो गया कि चाह कर भी उसके पास न जा सका, वो गुस्से में चिल्लाया। ड्राइवर के वहां से जाने के बाद विधिक ने होटल मैनेजर को कॉल करके अपने पास किसी ड्राइवर को बुलाया। थोड़ी देर बाद वो घर आ चुका था, पर उसकी आंखों में वो दृश्य दे रहा था जब आंशी किसी और के गले लगी हुई थी। तुम क्यों देती हो मुझे इतनी तकलीफ? मैंने कहाँ कमी रखी थी अपने प्यार में? तुम्हें अपना सब कुछ दिया और आज भी सब देने को तैयार हूँ। तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास कैसे जा सकती हो? अपना नहीं तो उस लड़के का ही ख्याल कर लेती। मेरे होते हुए तुम कभी किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो आंशी। तुम्हें मैं कुछ नहीं कर सकता, पर इसकी सजा वो लड़का जरूर भुगतेगा। भले ही मैं आज उसका चेहरा ना देख पाया हूँ, पर ज्यादा दिन तक तुम दोनों मुझसे दूर नहीं रह पाओगे, एक शहर में रहते हुए तो बिल्कुल नहीं। विधिक खुद से बातें कर रहा था तभी दिव्याना वहाँ लावण्या के साथ पहुँची। वो उसे छोड़ने के बाद वहाँ से जा चुकी थी। दिव्याना आगे आई तो उसने देखा विधिक दिन में भी शराब पी रहा था। आप क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप तो मीटिंग में गए थे, दिव्याना उसके पास आकर बोली। विधिक की आंखों में आंसू थे। उसने उसके आंसुओं को पोंछकर कहा, बताइए हमें क्या हुआ है? क्या आपको ज्यादा दर्द हो रहा है इसलिए आप ये पी रहे हैं? हाँ बहुत दर्द हो रहा है शिवांगी, इतना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम डॉक्टर से बात करके पेन किलर लेकर आते हैं। शिवांगी वहाँ से जाने को हुई तभी विधिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। मेरे पैर में नहीं, मेरे दिल में दर्द हो रहा है शिवांगी, वो क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? मैंने उसके लिए खुद को बदला ना, कोई भी लड़की मेरे साथ सोने के लिए तैयार रहती थी, पर उसके आने के बाद मैंने किसी को हाथ तक नहीं लगाया, फिर वो मुझे छोड़कर किसी और की कैसे हो सकती? विधिक ने भरी आवाज में कहा। आप किसकी बात कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, शिवांगी ने उसे खुद से अलग किया। वो उसके पास बैठ गई। वो बटरफ्लाई, मैंने उसे देखा किसी और के साथ, वो उस लड़के के गले लगी हुई थी शिवांगी, उसने साड़ी पहन रखी थी, कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली? क्या उन्होंने लाल साड़ी पहनी थी? शिवांगी ने अचानक पूछा। उसने आंशी को रेड साड़ी में देखा था। उसी का ध्यान आते ही शिवांगी ने पूछ लिया। हाँ, विधिक ने जवाब दिया। आप घबराइए मत विधिक जी, अक्सर लड़कियां शादी से पहले भी साड़ियां पहनती हैं। आपने पिछली बार उन्हें देखा था तब आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे लगे कि उनकी शादी हो गई है, विधिक ने ना में सिर हिलाया। शिवांगी ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, तो बस उनकी शादी नहीं हुई है, आपको गलतफहमी हुई होगी। वैसे आपने उन्हें इस बार कहाँ देखा? हम ट्रैफिक में फंसे थे हैं, वो एक लड़के के साथ गाड़ी में, उसके साथ फ्रंट सीट पर थी और उसके गले लगी हुई थी, वो उदास थी, रो रही थी। हाँ तो हो सकता है वो उसका दोस्त हो और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा ही है, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, शिवांगी ने कहा और उसके हाथ से शराब का ग्लास लेकर एक तरफ रख दिया। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। शिवांगी की बातों ने कुछ हद तक विधिक को तसल्ली दी। शिवांगी उसे उसके कमरे में छोड़ आई और फिर किचन में आकर उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगी। इसका मतलब लवी का शक सही है, वो लड़की जो अमन के ऑफिस में काम करती है वही विधिक की बटरफ्लाई है। आंशी नाम है उसका, जो अब तक विधिक हम सब से छुपाने की कोशिश कर रहा था। जरूर इसने उस लड़के के साथ आंशी को देखा होगा और उसे उसका हस्बैंड समझ लिया होगा। आंशी ने भी आज रेड साड़ी पहनी थी। बस अब मुझे ये न्यूज़ मिस्टर दत्त तक पहुंचानी है, बाकी का काम वो खुद कर देंगे। दिव्याना ने अपना प्लान बना लिया। वो कॉफ़ी लेकर विधिक के पास पहुंची। अपनी जिद के चलते वो एक साथ कई जिंदगियों के साथ खेलने जा रही थी, उनमें विधिक भी था। मुसलमान अमन के घर से वापस आने के बाद आंशी काफ़ी परेशान थी। घर आते ही उसने ड्रेस चेंज की और लैपटॉप लेकर बैठ गई। वो अपने पापा की चूज की हुई यूनिवर्सिटी देख रही थी। स्विट्ज़रलैंड काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ की ब्यूटी देखकर मुर्दे का भी जीने का मन कर जाए, तो हो सकता है वहाँ रहने के बाद मैं भी अपने पुरानी यादों को भूल जाऊँ। विधिक के प्यार को भुलाना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो उस प्यार के लायक ही नहीं था। लेकिन अमन, मैं नहीं जानती मैं उसे कैसे भूल पाऊंगी। अमन और लावण्या के बारे में सोचकर आंशी अभी भी रो रही थी। उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर अर्जुन वहाँ आया। हे, पागल हो गई हो क्या? कैसे बच्चों के जैसे रो रही हो? तुमने इतने बड़े क्रिमिनल का सामना किया, ये तो बस एक छोटा सा दर्द है, तुम भूल जाओगी। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ये छोटा सा दर्द नहीं है, तुम नहीं समझोगे, तुम्हें नहीं पता प्यार क्या होता है। या शायद मैं समझ सकता हूँ, अर्जुन ने कंधे उचकाकर कहा। उसके ऐसा कहने पर आंशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या तुम्हारा भी दिल टूटा है? टूटने से पहले जुड़ना भी जरूरी होता है यार। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, पर उसे बता नहीं पा रहा। अर्जुन उससे बातें करते हुए उसके पास बैठ गया। आंशी ने उसे जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा और फिर उससे थोड़ा दूर खिसकने लगी। उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे प्यार करता है? अर्जुन, मैं तेरी फीलिंग समझ सकती हूँ, साथ रहते हुए दोस्त से प्यार हो सकता है, पर प्लीज हमारी दोस्ती में ये प्यार वाला रायता मत फैला। तुझे अच्छे से पता है मैं अमन को पसंद करती हूँ। तूने मुझे आगे बढ़ने का कहा, पर यह बहुत जल्दी होगा और मैं तुम्हें लेकर ऐसा कुछ फील भी नहीं करती। तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त, आंशी बोले जा रही थी, जबकि उसकी बातें सुनकर अर्जुन उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। अबे ओ टीवी सीरियल की महारानी, क्या उन लोगों की तरह तूने भी अपनी अकल बेच खाई है? दुनिया खत्म भी हो जाए, फिर भी मैं तुझ जैसी पागल लड़की से कभी प्यार नहीं करूंगा। मतलब क्या है तेरे कहने का? आंशी चिढ़कर बोली।
वही जो होना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारी हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। मुझे नहीं पता उस साइको ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा होगा जो तुमसे प्यार कर दिया। एक बार के लिए शक्ल देखकर फिर भी लोगों को धोखा हो जाए, पर अक्ल, उसका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे बॉस की सगाई थी, जिस लड़की से उसकी सगाई होने वाली थी उससे ज्यादा सच धज कर तू वहाँ खड़ी थी, वो भी सिर्फ एक फाइल देने के लिए। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं तुझसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। वो एक साइंटिस्ट है, एंड ट्रस्ट मी, इतनी ब्रिलियंट है कि उसकी इंटेलिजेंस का 1% भी तुझ में नहीं है। अर्जुन एक सांस में सब कुछ बोल गया। उसकी बातें सुनकर आंशी गुस्सा हो गई। उसने तकिया उठाया और उसे मारने लगी। तू किसी और से प्यार करता है, ये अच्छी बात है, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? कमीने इंसान, मुझ जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, वरना लोगों का एक छोटा सा नाखून भी टूट जाए तो हू हल्ला मचा देते हैं। मेरे साथ इतना कुछ हो गया, फिर भी मैं अपनी लाइफ को जीना जानती हूँ, मैं आगे बढ़ना जानती हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ मी, चाहे लोग मुझे पागल बोले या बेवकूफ। अर्जुन आंशी से बचने के लिए भाग रहा था। उसने भागते हुए कहा, आए बड़ी जिंदा दिल लड़की, कुछ देर पहले तो क्राई बेबी की तरह जोर जोर से रो रही थी जैसे दुनिया लूट गई हो। महान आत्मा, थोड़ा दिमाग लगा, उसकी सगाई हुई है, शादी नहीं, तू अभी भी उसे पा सकती है। उसके पीछे भागते हुए आंशी थक गई तो वो सोफे पर बैठते हुए बोली, कम ऑन यार, मैं टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड मूवीज ज्यादा देखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वैम्प वाली हरकतें करूँ, मैं बहुत कूल हूँ। ब्रेकअप के बाद थोड़ा बहुत रोना धोना करके वेकेशन पर जाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे डैड ने मेरे लिए स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया, वहाँ जाकर मजे करूंगी, क्या पता कोई और अमन से भी अच्छा मिल जाए। कुछ ही देर में आंशी का मूड बिल्कुल ठीक हो गया था। वो उदास थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी अर्जुन के सामने ये सब जाहिर नहीं किया। इसका मतलब तो सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, अर्जुन ने बुझी आवाज में कहा। जी बिल्कुल, किसी महान इंसान ने कहा है कि कहीं पर पहुंचने से पहले कहीं से निकलना जरूरी होता है, तो बस यहाँ से निकलकर बहुत आगे पहुँचने वाली हूँ। और हाँ, मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ, जो मेरा है वो मेरे पास आ ही जाएगा, मुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है। अच्छा, तो कहीं से निकलने के लिए तुम्हें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्या वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद कर देगा? कंपनसेशन भी अच्छा खासा होगा ना? अर्जुन के कहने पर आंशी को कॉन्ट्रैक्ट की याद आई, जब उसने जबरदस्ती अमन से कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग बढ़ाकर एक्स्ट्रा कंपनसेशन अमाउंट लिखवाई थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, उसका तुम मुझ पर छोड़ दे, चला मिलकर एक अच्छा सा रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं। और हाँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से जरूर मिलवाना, मैं जाने से पहले देखना चाहती हूँ ऐसी कौन है जिसने तुझ जैसे बंदर को पसंद कर लिया। अर्जुन और आंशी साथ मिलकर रेजिग्नेशन लेटर लिख रहे थे। आंशी ने आगे बढ़ने का सोच लिया था और वो उसका पहला कदम था जो वो अमन से दूर जाने के लिए उठा रही थी। अगले दिन आंशी रेजिग्नेशन लेटर के साथ ऑफिस पहुंची। वो मिस्टर सिंह के ऑफिस में जाने के बजाय डायरेक्ट अमन के फ्लोर पर जा रही थी ताकि आते ही उसे रेजिग्नेशन लेटर दे सके। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और आज उसके सामने आते ही सब हवा हो गया। पता नहीं कैसे उसका सामना करूंगी, पर जो भी हो मैं उसके सामने वीक नहीं पड़ सकती। अब जब वो खुद जानबूझकर खाई में कूदना चाहता है तो मुझे क्या, रहे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश। आंशी उतरे हुए चेहरे के साथ अमन के ऑफिस की तरफ पढ़ रही थी। वहां आकर उसे पता लगा लावण्या आज ऑफिस नहीं आई थी। भारी मन से आंशी ने अमन के केबिन का दरवाजा खटखटाया। कहीं ना कहीं वो भी उसके आने का इंतजार कर रहा था, पर आंशी के मन में जो चल रहा था वो उससे पूरी तरह अनजान था।